ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज पढ़ेंगे हम लोग भागवत महापुराण से सुंदर रूप। क्या नाम उसका नाम? सुंदर रूप। इधर आओ। तो अंग्रेजी जानता है, हिंदी जानता है? पांचवां स्कंद अध्याय छ पयात गद्य 17। यस्याम एवा यस्यामेव कवयः आत्मानं अविरतं विविध ब्रजिन संसार परिताप उपतप्यमानं अनुशमनम स्नापयन्त तया एव परया निवृत्त्या हि अपवर्गम। अत्यंतिकं परमपुरुषार्थं अपि स्वयं आसादितं न एव आद्रियन्ते भगवद्यत्वेन एव परिसमाप्त सर्वर्था। यस्याम एव कवयः आत्मानं विरतं विविध ब्रजिन संसार परितापोत्तप्तः मा परतप्तं आनं अनुशमनं स्नापयन्त तथैव तैव परया निवृत्त्या हि अपवर्ग अत्यंतिकं परम पुरुषार्थम अपि स्वयं आसादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीये त्वेनैव परिसमाप्त स्वार्थः। यस्यामेव जिसमें कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति के अमृत में कवयः पंडित जन आत्मानम् आत्मा स्वयं अविरतम निरंतर विविध अनेक ब्रजिन पाप पूर्ण संसार भौतिक संसार में परिताप दुखों से उपतप्यमानम तपे हुए दुखी अनुशमनम निरंतर स्नापयंत स्नान करते हुए तया उससे एव निश्चय ही परया महान निवृत्त्या प्रसन्नतापूर्वक ही निश्चय ही अपवर्गम मुक्ति आत्यंतिकम बिना अवरोध के निरंतर परम पुरुषार्थम मानवी सफलताओं में सर्वश्रेष्ठ अपि यद्यपि स्वयं आसादितम प्राप्त नो नहीं एव निश्चय ही आद्रियंते प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं भगवद्यत्वेन एव श्री भगवान से संबंध होने के कारण परिसमाप्त पर सर्वार्थ जिसकी समस्त भौतिक कामनाओं का अंत हो चुका है। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भक्त जन भौतिक संसार के विभिन्न दुखों से मुक्त होने के लिए निरंतर भक्ति सरिता में स्नान करते रहते हैं। इससे उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है और मुक्ति स्वयं उनकी सेवा करने आती है, तो भी वे उस सेवा को स्वीकार नहीं करते। भले ही श्री भगवान स्वयं क्यों न सेवा के लिए तत्पर हो, भक्तों के लिए मुक्ति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाने पर उनकी प्रत्येक आकांक्षाएं पूरी हो जाती है और वे समस्त भौतिक कामनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। तात्पर्य, इस संसार के कष्टों से मुक्ति चाहने वालों के लिए ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि भगवत गीता 6:12 में कहा गया है, यम लब्धवा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा। इसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य सोचता है कि इससे बड़ा कोई अन्य लाभ नहीं है। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना ईश्वर से अभिन्न नहीं है। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना ईश्वर से अभिन्न नहीं है। अंग्रेजी कहा है, when one attains the service of the Lord, which is none different from the Lord, ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना ईश्वर से अभिन्न नहीं है, अतः उसके बाद और कोई कामना नहीं रह जाती। मुक्ति का अभिप्राय है संसार से छुटकारा। बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, मुक्ति मुकुलतांजलि सेवते स्मा। भक्त के लिए मुक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति ईश्वर के दास की है, अतः जब कोई जीव ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है तो उसे पहले से मुक्ति प्राप्त हुई रहती है। फलतः भक्त कभी मुक्ति की स्पृहा नहीं करता, भले ही ईश्वर स्वयं क्यों न प्रदान करें। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महदेवी पुरो विभो निरमाय सेते यदमुषु पुरुषं मुक्ते गुणां षोडशोडशात्मकम् सोलम कृषिष्ठम भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सोचा था कुछ बात बताऊं। पुराने जमाने में इस्कान में किताब निकाला गया था, बहुत पतला किताब था, हाउ टू गिव क्लास इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। यू रिमेंबर दैट? यू हैव स्टिल? हाउ टू गिव अ गुड क्लास। तो पहले बताई जाती थी क्लास में चार चीज बहुत जरूरी है। एक, जहां का टिकट खरीदे हो उसी ट्रेन में बैठो, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी जो श्लोक है, जो विषय वस्तु की चर्चा हो रही है, उसी विषय वस्तु के विषय में बात करनी चाहिए। पहले श्लोक को समझें और बाद में श्लोक को समझाएं। एक पहला बात समझना जरूरी है कि यह श्लोक क्या कह रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पहले अपने भेजे में जाना चाहिए, तो हम इसको समझा सकते हैं। एक बात। दूसरा, इसमें फिलॉसफी क्या है और इसमें कहानी क्या है या उपदेश क्या है कुछ, तो इसका भी निरूपण करना चाहिए। इसका फिलॉसफी क्या है, कहानी क्या है, जो भी फिलॉसफी होगा उस फिलॉसफी का प्रतिपादन करने के लिए अनेक शास्त्रों से रेफरेंस ले सकते हैं। यदि कहानी होगा तो कहानी को सिद्ध करने के लिए उस कहानी को हम बदला सकते हैं और उसका जो सारांश है वह सिद्धांत से मिलता जुलता होना चाहिए। कभी कभी सिद्धांत को समझाने के लिए कहानी कहनी पड़ती है। हो सकता है कि वो कहानी कहीं शास्त्र का न हो, किसी वेद पुराण कहानी नहीं है, लेकिन सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जो भी कहानी कहे उसका एक किताब निकाला गया, उपदेशेर उपाख्यान, उसमें से बहुत सी कहानियां हैं। जैसे यस नो वेरी गुड, कहानी सुना आप लोगों ने, यस नो गुड, ये किस पुराण का है, किस वेद का है, कहां का है, लेकिन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कहा गया है। वैसे ही वो बलम राइस, कौन कौन राइस, बलम राइस ना, वो कहां का है। वैसे ही एबीसीडी वाला, वो कहां का है, लेकिन सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कहानी कहा गया है। ठीक है, चलता है। और तीसरा बात कि यह जो कहा गया है आज के दिन में कितना यह प्रमाणिक है, आज के दिन में इसको कैसे हम उतार सकते हैं, तो ये तीन बात देखना बहुत जरूरी है। पहले एक होड़ था, इस तीन के बाद एक चौथा था कि कौन कितना बार कृष्ण का नाम कथा में कहता है, कृष्ण का नाम ज्यादा होना चाहिए कथा में, कि कृष्ण सबको शुद्ध करने वाले हैं। ये नहीं कि श्लोक पढ़ लिया, तात्पर्य पढ़ लिया, किताब इधर रख लिया और बोलते रहो, हम तो 24 घंटे बोलते रहेंगे, उससे मतलब क्या। तो मैं सोचा कि ये थोड़ा बतला दूं कि हाउ टू गिव ए गुड क्लास है इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अच्युतानंद स्वामी हम लोगों को इन दिनों क्लास दिया करते थे, बताते थे। मैं सोचा कि आज का श्लोक और कल का श्लोक, ये दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक श्लोक में जो कल का श्लोक था उसमें यह बतलाया गया है भगवान ऋषभ देव के श्रवण कीर्तन का महिमा बताया गया है और उसका फल बताया गया है, और उसका फल है कि वासुदेवे एकांततो भक्तिर अनियोरोपी सम अनुवर्तते। वासुदेवे एकांततो भक्तिर, भगवान वासुदेव के चरणों में अनन्या भक्ति की प्राप्ति होती है। और आज का जो श्लोक है उसमें भक्ति की महिमा बताई गई है, मुक्ति और भक्ति के भेद को बताते हुए भक्ति के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। चार बात बताई गई है आज के श्लोक में। भक्ति कौन करता है यह बताई गई है, जो भक्ति को प्राप्त कर लेता है उसे मुक्ति की कोई जरूरत नहीं होती है, मुक्ति दरवाजा खटखटाती है फिर भी उसे वो स्वीकार नहीं करता है, और जो भक्ति में लीन हो जाता है पूर्णतया वह भगवान का अपना हो जाता है, भगवान उसे आत्मसात करते हैं और उस व्यक्ति को अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन चार बातों पर हम लोग विचार करेंगे। थोड़ा मैं सोचा कि कल वाला श्लोक, प्रभु जी ने अच्छा क्लास दिया लेकिन कल का जो श्लोक था वो क्लियर नहीं हो पाया। मैं सोचा कि कल बताया गया है इति हस्म सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवा परम गुरु भगवत ऋषभस्य विशुद्ध चरितम आरितम। यहां पर बताया गया है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित इस प्रकार संपूर्ण इति, गा करता हूं संस्कृत में अथ और इति दो शब्द होता है, अथ मतलब शुरू और इति मतलब विधि समाप्त हो गया। इस प्रकार सकल वेद संपूर्ण वेद, लोक लोक, देवता देवता, ब्राह्मण गवाम ब्राह्मण और गौओं के, परम गुरु भगवान ऋषभ, इनके परम गुरु भगवान ऋषभ का अख्यस्य विशुद्ध चरित्र, अकेश्य विशुद्ध चरितम इतिरितम, इस प्रकार से मैंने आपको सुनाया। भगवान ऋषभ देव कौन है बतलाया गया है कि सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गौओं के परम गुरु हैं, उनके विशुद्ध चरित्र को अब तक से मैंने बतलाया एक बार, ठीक है। अब कहते हैं पूंसाम, आज के दिन उसका क्या, उस चरित्र का क्या फल हुआ, क्यों बताया, क्या कारण है अगर सुनने से क्यों हम सुनेंगे, तो कहते हैं पुंसा समस्त दुःचरिता भी हरणम। व्यक्ति के जितने भी अनवांटेड डिजायर्स हैं जिसके चलते व्यक्ति पाप करता है उसके समस्त पापों को यह चरित्र हर लेते हैं। भगवान के विशुद्ध चरित्र को सुनेंगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि पाप से कोई दुख भोगता है और पुण्य से कोई सुख भोगता है। संसार में यदि कोई दुख भोग रहा है तो कारण है पाप, और पाप का जड़ है इंद्रिय तृप्ति की भावना, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। जय श्री गौ निताय राधा रस विहार सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ठीक है, अब तक से क्लियर हुआ कि यह सुंदर चरित्र जो है, विशुद्ध चरित्र जो भगवान ऋषभ देव का, पुंसा समस्त दुष्चरितम अभिहरणम, उसके समस्त पापों को वो हर लेता है। परम महामंगल, और उस व्यक्ति का जो जीवन होता है वह मंगलमय हो जाता है। महामंगल, महामंगलम, मंगल ही नहीं महामंगलमय। अयनम इदम, अयनम इदम अनुश्रद्धया उपचितया, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ में यह विशुद्ध भगवान ऋषभदेव का चरित्र सुनता है एकाग्रचित से, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। सुनना ही नहीं, अनुश्रुणोति, किससे सुनना चाहिए? सब लोगों से नहीं सुनना चाहिए, अनुश्रुणोति, उन लोगों से सुनना चाहिए जिन्होंने पहले सुना है, जो पहले सुने हैं उनसे सुनना चाहिए। नैमिषारण्य के ऋषि लोग जब सुत गोस्वामी से मिले तो कहते, सुतम जानाति भद्रम ते भगवान सात्वताम पति, प्रथम स्कंध है यहां पे। शुरू में कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, आप अनघ हैं, आप पाप रहित हैं, और आपने गुरुओं से इसको सुना है। स इतिहासानी चानगा, आप अख्यातान विधितानी, अख्यातान विधितानी भूल गया, एनीवे आपने इसे सुना है, तो सुना वही सकता है जो कि सुना है। प्रभुपाद जी इस बात पर बार बार कहा करते थे कि जो जितना अच्छा सुनेगा वो उतना अच्छा सुना सकता है। प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज से सुना, इसलिए मैं आप लोगों को सुना सकता। और प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि एक बार राधा कुंज पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ऐसे प्रवचन कर रहे थे मंदिर में, प्रभुपाद कहे कि मैं भी वहां पर था, प्रवचन सुन रहा था। जब मंदिर खुला सब भक्त को कथा सुन छोड़ करके और भगवान का दर्शन करने चले गए, प्रभुपाद ने कहा कि मैं चुपचाप वहां बैठे रहा और सुनता रहा जो गुरु जी कह रहे थे। जब सब भक्त लोग आ गए तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि सो यू फिनिश योर आई एक्सरसाइज, आंख का कसरत, मैं आंख कसरत ठीक नहीं हूं, क्या हिंदी क्या होगा आई एक्सरसाइज का, ओके आपका व्यायाम, आपका व्यायाम आप लोग खत्म कर लिया, यानी ठाकुर जी के दर्शन को भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी आई एक्सरसाइज कर रहे हैं। भागवत कथा से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भागवते कथा से तव अवतार, भागवते कथा से तव अवतार धीर होइया सुने यदि काने बार बार। भगवान का अवतार जो है ये भागवत कथा से होता है, भगवान को कैसे जान सकते हैं ये भागवत से, नहीं तो पत्थर का मूर्ति देखेंगे और क्या देखेंगे, क्या देखेंगे उसमें,
अच्छा सजावट हुआ है, अच्छा माला बना दिया, अच्छा पुजारी लोग ड्रेसिंग कर दिए, वही देखेंगे और क्या देखेंगे। ये श्याम सुंदर है, रासलीला कर रहे हैं, दिखाई पड़ता है क्या? ये कब दिखाई पड़ेगा? जब हम भागवत सुनेंगे तब। भागवत कथा से तव अवतार, तो ये दर्शन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कथा सुनना। कथा सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। षड गोस्वामी गण मंदिर बनाकर दर्शन करने नहीं जाते थे, वो तो राधा कुंड पर बैठ करके कथा सुनते थे और सुनाते थे। ये गोस्वामी परंपरा है। चैतन्य महाप्रभु मंदिर खड़ा करने नहीं गए थे वहां पर जाकर के, ये तो पब्लिक के लिए ठीक है, वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को भगवान को समझने के लिए ये जरूरी है कि सुने, बहुत जरूरी है। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा सो इन्फिनिटी और आई एक्सरसाइज। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने हमारे विषय में कहा कि दिस बॉय इज वेरी अटेंटिव इन हियरिंग सो ही कैन स्पीक नाइसली। तो जो सुनता है वही बोल सकता है। तो इसीलिए यहां पर आया हुआ शब्द अनुश्रुणोती और आश्रवती, दोनों, जो सुनता है और जो सुनाता है, दोनों, उन दोनों को, जो सुनता है और जो सुनाता है, वाहितो वा अहितो, वो भी कैसे अवहितो, सावधानी पूर्वक। सुनने वाले को सावधानी बरतना चाहिए और सुनाने वाले को भी सावधानी बरतना चाहिए। सुनने सुनाने से ही भगवान वासुदेव तस्मिन, देयरफॉर कंक्लूजन कह रहे हैं, तस्मिन वासुदेवे एकांततो भक्तिर अनयो, दोनों को एकांतिक भक्ति प्राप्त होती है, सुनने वाले को भी और सुनाने वालों को भी। और वो भी कैसे? समानुवर्तते, सम्यक रूप से, सही सही समझदारी के साथ में भक्ति प्राप्त होती है सुनने वाले को भी, सुनाने वाले को। तो इस श्लोक में दो बात बताई गई है। एक बात बताई गई है कि भगवान ऋषभ देव के विशुद्ध चरित्र को सुनने से समस्त पाप स्वाहा खत्म हो, और दूसरा फायदा होता है कि सुनने और सुनाने दोनों वालों, दोनों को भगवान वासुदेव के चरणों में सम्यक एकांतिक भक्ति की प्राप्ति होती है। अब कोई कह सकता है यह है फल, यह है फल उपसंहार के रूप में। ये जो श्लोक हैं, ये दोनों श्लोक कल का और आज का एक उपसंहारक श्लोक है, इस अध्याय का उपसंहार हो रहा है, महिमा बतला कर गया है। कोई कह सकता है अरे ऐसे कह दिए हैं, ऐसे कह दिए हैं, इससे क्या फायदा है, ऐसे थोड़े होता है। कभी कभी पुराणों में, वेदों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है या भगवान कथा सुनता है उसे यह फायदा होता है, यह फायदा होता है। अगर उन पुराण प्रणाम वर्ण किया गया, यह फायदा होता है, यह फायदा होता है, यह फायदा होता है। जिनको भगवान में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है, वो लोग कहते हैं साधु लोग अपने रोटी कपड़ा के लिए से बता दिए हैं ताकि लोग सुनेंगे कथा को। महाभारत में कैसी कथा है कि मैं संडे क्लास में बताया था, महाराज युधिष्ठिर के यहां पर साधु महात्मा लोग आया करते थे कथा कहने के लिए। तो एक साधु कथा कह रहे थे और कथा हम बतला रहे थे कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भजन करने चाहे तो उसमें से 1,00,000 बाधा उत्पन्न होती है। कितना बाधा उत्पन्न होती है? 1,00,000। 1,00,000 व्यक्ति या वस्तु होती है जो बाधा उत्पन्न करती है, इंक्लूडिंग आवर ओन माइंड, आवर सेंसेस, एक लाख। जो कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या ध्यान करता है तो 75,000 बाधाएं आती हैं, काउंटेड। जो कोई दान देना चाहता है उसमें 25,000 प्रकार की बाधाएं आती हैं। जो कोई गंगा स्नान इत्यादि करने जाए तो वहां पर नहीं 25,000 बाधाएं आती है। दान देना चाहे 50,000, गंगा स्नान करने जाए तो 25,000। तो भीमसेन बैठे थे और कृष्ण को चिट्ठी काटे, कहे कृष्ण ये क्या सही बोल रहे हैं बाबा जी क्या है? हमको लगता है ये अतिशोक्ति कह रहे हैं, ये ज्यादा ही कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं इस बात को, ऐसा बात नहीं है। तो कृष्ण ने कहा कि भीम भैया देख, जिसने शास्त्र लिखा है वो तो पेड़ के नीचे बैठ करके लिखा है, वो चेला चपाटी बनाने के लिए गुरुदक्षिणा के लिए तो नहीं लिखा है, अपना फॉलोअर बनाने के लिए नहीं लिखा है, ये जल कल्याण के लिए लिखा है, उसका इसमें स्वार्थ क्या है? तो बढ़ा चढ़ाकर क्यों लिखेगा? अरे हम किसी के विषय में कुछ बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, किसी के विषय में हम कुछ ये कहते हैं, मतलब कुछ चाहते हैं, चमचागिरी करते हैं, मतलब कुछ चाहते हैं, मैं भाषा बोलता हूं चमचागिरी करते हैं। तो आप भीम बताओ इसमें उनको क्या चाहिए? तो भीम से ने कहा कि हमको इस पर विश्वास नहीं है, मैं प्रमाण देखता हूं। अरे गंगा स्नान करने में 25,000 लोग कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, 25,000 प्रकार के डिस्टर्बेंस कैसे खड़ा हो सकती है? भीम ने कहा मैं देखता हूं। वो चले गए अपना गदा उदा लेकर गंगा जी किनारे, दिन भर खड़े रहे, सब लोग आए स्नान किए चले गए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। भीम आए कहे कृष्ण ये तुम्हारा शास्त्र सब झूठा है, तुम लोग कहने वाले सब झूठे हो, मुझे विश्वास नहीं। अच्छा क्या हुआ? भगवान ने कहा देखो भीम तू ऐसा मत कहो भाई, ये गलत बात बोल रहे, ठीक नहीं है, साधु महात्मा का निंदा करना ठीक नहीं है, शास्त्र का निंदा करना ठीक नहीं है। कहा कि जो बाबा ने कहा, पंडित जी ने कहा कि 25,000 डिस्टर्बेंस हो जाता है गंगा स्नान करने में, मैं गया था गदा लेकर के खड़ा था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, कोई तकलीफ नहीं हुआ, लोग आए प्रेम से स्नान किए चले गए। तो भगवान ने पूछा भीम तू कितना देर वहां खड़ा था? कहा 12 घंटा। तू स्नान किया? कहा कि नहीं स्नान किया। तो भगवान ने कहा कि तू प्रणाम किया गंगा जी को? कहा प्रणाम भी नहीं किया। तो कहा तो यही तो बाधा है, तुम्हारा 12 घंटा बाधा हो गया, तू गंगा जी के किनारे जाकर के स्नान भी नहीं किया, तो ये बाधा नहीं हुआ, कोई तो बाधा हुआ, इस स्नान नहीं कर पाया। और वो तुम्हारा बाधा क्या हुआ? तुम्हारा समय, अहंकार। तो विभिन्न प्रकार की बाधाएं होती हैं, इसलिए बाधाओं से उपरत होने के लिए मंगलाचरण जरूरी होता है। मैं मंगलाचरण का वर्णन कर रहा था। एनीवे तो यहां पर दिखाई पड़ता है कि इतना बड़ा, अब सुखदेव गोस्वामी एक कथा कहते हैं बाल ब्रह्मचारी, उनको क्या लेना देना है झूठ बोलने से? सोचा जाए ऋषभ देव का कथा तो कोई ये महात्मा प्रश्न पूछ देंगे बाद में, अरे हम तो पूरा कथा सुन लिए लेकिन भगवान में अनन्या भक्ति अभी तक मिली नहीं, पुरुष पुस्तक दे है ना, हमारा सब पाप खत्म नहीं हुआ अभी तक, तभी मतलब गलत है। ये तो लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान ऋषभ देव के विशुद्ध चरित्र को सुनता है उसका समस्त पाप खत्म हो जाता है, पाप को हरने वाला है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कंडीशन कैसे सुनना, एकाग्रचित होकर के एकांतिक भाव से है? श्रद्धा के साथ और एकाग्रचित होकर के, दो इसमें बात है। जो श्रद्धा के साथ एकांतिक भाव से, यानी जब सुन रहे हैं तो मन एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, तब तो उसका लाभ होगा। चलिए इस श्लोक पर हम नहीं कहेंगे, आगे का श्लोक। ठीक है, वह व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करता है। और भक्ति कैसी है, और भक्ति का गुणगान इस श्लोक में किया गया है। दो बातें हैं, एक तो पाप दुख से निवृत्ति होती है, तो दुख से निवृत्ति तब होगी जब हमारा पाप खत्म हो जाएगा, क्योंकि संसार जो है यस्यामेव कवयः, जो साधु महात्मा लोग हैं, जो कृष्ण भावना भावित लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वे लोग निरंतर इस बात को जानते हैं, लोगों को बतलाते हैं और कहते हैं ये संसार कैसा है। विविध ब्रिजिन संसार परितापो परिताप तप्त, यह जो संसार है तरह तरह के पापों से पूर्ण है, और संसार में लोग तप रहे हैं इस तापों से, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीन पाप, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये सब दुख है जिसे लोग दुखित हैं संसार में। ये संसार ही है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, यहां पर सुख है ही नहीं। तवे पंडित लोग जो इस बात को जानते हैं, वो बुधा लोग, वे कवय लोग जो जानते हैं संसार के स्वरूप को कि संसार कैसा है। भागवतम में एक श्लोक है संसार का महिमा, कि संसार को ऐसा समझते हुए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। संसार को अच्छा समझेंगे तो भजन नहीं करेंगे, भूल जाओ। जब समझोगे, समझने का मतलब प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, नॉलेज से नहीं, ज्ञानम विज्ञानम सहितम, क्या समझना है इसमें कि विविध मतलब विभिन्न प्रकार का ब्रिजिन पाप, एक प्रकार का पाप नहीं है, विभिन्न प्रकार का पाप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये हरे कृष्ण जप करना पाप नहीं है, ये पाप से छुड़ाने का तरीका है। पाप क्या था, क्लास में सोना, क्लास में सोना पाप था, तो हरे कृष्ण बोलते थे क्या हो गया, अब जग गए ना, तुरंत परिणाम मिल गया ना, तो पाप से निवृत्त होने का तरीका है हरे कृष्ण। हाँ, तो बात हो रहा था विविध ब्रिजन संसार परिताप उपतप्तमानम, वो भी कैसे, अनुशमनम, निरंतर दुख से दुखी हैं, संसार के तापों में जल रहे हैं। संसार दावानोले दीवानिसी हिया ज्वाले जुड़ाईते ना कोनो उपाय, ये संसार कैसा है दवानल के समान। संसार की उपमा हमेशा दी गई है दवानल से। अर्ली मॉर्निंग हम लोग आते हैं, संसार दावा नलली ढलो का, ये दवानल है, जंगल में लगने वाली आग, एक पेट में आग लगती है, एक समुद्र में आग लगता है, एक जठराग्नि कहलाती है, एक महदाग्नि कहलाती है। इन लोगों का टाइम टेबल है, समय सीमा है, दिन भर भूख नहीं लगा रहता है, कभी कभी लगता है ना, अभी आधा घंटा में भूख लग जाएगा है 9:30 बजे, दिन भर भूख नहीं लगता है। वैसे ही प्रलय की अग्नि हमेशा नहीं जलती है, वो जलती है लेकिन कब आता है, प्रलय के समय आता है, लेकिन दवाग्नि का कोई समय नहीं है, वो आंधी बहा घर्षण हुआ लग गया जंगल में। इसीलिए यहां पर आया हुआ है अनुशमनम, हम लोग संसार में हैं, बड़े खतरनाक जगह पर हैं, अच्छा जगह नहीं है संसार, परितप्त हैं 24 आवर अ डे, संसार दावानोले दीवानी से ही अजवाले, दिन रात हम जल रहे हैं, लेकिन जुड़ाई ते ना कहीं उपाय, हम लोग जुड़ाने का उपाय कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कबाया पंडित लोग उपाय किए हैं। और वो उपाय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। वो भगवत भक्ति का उपाय किए हैं। इसलिए कहा गया है अस्नाप स्नापनंत तया एव पराया। इस प्रकार से क्या हो रहा वो कवि लोग भक्त लोग पंडित जन सुधा जन संसार के प्रवृत्ति को जानते हुए संसार में स्नान नहीं करते हैं, वो भक्ति में स्नान करते हैं, हैं? स्नापयंत यहां पर शब्द आया हुआ है, नित्य निरंतर इस भक्ति के सरिता में वे लोग स्नान करते हैं। किसका मोबाइल बज रहा है? स्नान हम लोग करते हैं। कोई आदमी बाल्टी और लोटा से स्नान करता है, उसका आनंद अलग है। वो सावर से स्नान करो, उसका आनंद अलग है। वो तालाब में स्नान करो जो तैरना जानता है, उसका आनंद अलग है। नदी में बहते हुए पानी में स्नान करो, उसका आनंद अलग है। और समुद्र में स्नान करो, उसका आनंद अलग है। तो स्नान में भी अलग अलग आनंद होते हैं। यहां पर कहा गया है वे स्नान करते हैं। कहां स्नान करते हैं? स्नाप अयंतम निर्मल भक्ति सरिता में। यह भक्ति सरिता को निर्मल बताया गया है, भक्ति की सरिता में बहते हुए पानी में शुद्ध है। सरिता का ही जल शुद्ध होता है, तालाब का जल शुद्ध नहीं होता है। सरिता जो बहता हो झरना के समान जो बह रहा हो, तो भक्ति बाह्यमान है, भक्ति एक स्थिता नहीं है जो। और महाप्रभु भी कहते हैं जारे देखो तारे कह कृष्ण, अपने पास मत रखो, दो तब शुद्ध रहोगे। बहता हुआ पानी और रमता हुआ जोगी हमेशा शुद्ध रहता है, एक जगह नहीं रहना चाहिए। कभी कभी चले जाना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मतलब मंदिर में रहते रहोगे तो इत्यादि करोगे, कुछ और काम करोगे, गड़बड़ करोगे। कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चले जाओ, बल्कि हमेशा जाओ अच्छा है। हमेशा मंदिर बनाना ठीक नहीं है, मंदिर पवित्र जगह है ना बामनदेव, लेकिन कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए, शुद्ध रहेगा। तो बहता पानी और रमता जोगी शुद्ध रहते। तो यहां पर बहते पानी में स्नान सरिता, सरिता में स्नान करने का बात कहा गया है। नित्य निरंतर नहाते हैं और इससे जो शांति मिलती है, जो सरिता में स्नान करने से गर्मी के दिन में ठंडक जो मिलती है। मैं आज कानपुर जा रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान है गंगा जी में अगर नहाऊंगा वाला काम करूंगा, कल एकादशी है ना, तो मन लग रहा है ऑलरेडी। ये सावर में स्नान करने में मजा नहीं है जो गंगा जी में स्नान करने में मजा है। नदी में जो स्नान करो तैर तो थोड़ा शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाएगा, हैं? अब हाथ भी नहीं चलाना पड़ेगा, अपने से आप सब हो जाएगा, गंगा जी सब कर देगी, तो उसका आनंद अलग ही है। तो जो व्यक्ति भक्ति रूपी सरिता में आनंद लेता है, स्नान करता है, परम पुरुषार्थम अपि नहीं सॉरी स्नापयंतम तया एव परया निवृत्तया ही अपवर्ग निवृत्तया, वो निवृत्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति भर पेट खा लिया हो और फिर बोले दो रोटी और ले लो, वो निवृत्त हो गया, उसको सिचुएशन खत्म हो गया, तो निवृत्त हो गया है। परया निवृत्तया, उसकी पूर्ण निवृत्ता हो गई है, वह पूर्ण प्रसन्नचित हो गया है, पूर्ण संतुष्ट हो गया है,
अब और किसी की जरूरत नहीं है। जो भक्ति देवी के शरण में चला गया है, जो भगवान ऋषभ देव के चरित्रों को सुना है, जो कृष्ण के चरित्रों को सुना है और भगवान वासुदेव के चरणों में प्राप्त कर लिया है, जो भक्ति देवी के शरण में चला गया है, वह पूर्णतया प्रसन्न रहता है। उसे अपवर्ग अत्यंतिकम परम पुरुषार्थम अपि स्वयं आसितम नो एवाद द्रियंते। वह हमेशा आनंदित रहता है उसके सामने। यहां पर अपवर्ग शब्द आया हुआ है, एक है पवर्ग और एक है अपवर्ग। इस संसार को पवर्ग कहा गया है। पवर्ग मतलब बताओ, हिंदी पढ़े हो? हाँ, प फ ब भ और म, ये कहलाता है पवर्ग। ये जो संसार है ये पवर्ग संसार है। प्रभुपाद जी कहते हैं प मतलब परिश्रम, वर्क हार्ड लाइक डंकी, गद्दे के समान परिश्रम करो पेट भरने के लिए, और फ मतलब इतना परिश्रम करो कि मुंह से फेन आ जाए, थूक सूखने लगे, इतना कठिन परिश्रम, और ब मतलब व्यर्थता, कोई फायदा नहीं, हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है, मरोगे खाली हाथ जाओगे, कुछ नहीं साथ में, जितना बैंक बैलेंस होगा यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, व्यर्थता। और भय मतलब भय, प्रभुपाद जी कहते हैं कि चिड़िया को चना डाल दो बेचारी खाती है और देखती रहती है, कोई आ तो नहीं रहा है, भय। और म मतलब जाओ मृत्यु, सबको मरना है। तो ये संसार कहलाता है पवर्ग। और भगवान का जो संसार है, वैकुंठ धाम है, वो कहलाता है अपवर्ग। तो यहां पर कहा गया ही मतलब निश्चय ही, दो राय नहीं है, ही अपवर्ग अत्यंतिकम परम पुरुषार्थम अपि, जिसने भक्ति के सजता में आनंद विभोर होकर के स्नान कर लिया है, उसमें जो शांति मिलती है, इतने आनंद की प्राप्ति होती है, उसके सामने मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ। यहां पर मोक्ष को अत्यंतिक परम पुरुषार्थ कहा गया है। आद्रियंते, सॉरी अत्यंतिक अकारण परम पुरुषार्थ, ये पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। और ये जो पुरुषार्थ है, यहां पर परम पुरुषार्थ शब्द आया हुआ है, इसको हटाते हैं परम पुरुषार्थ। एनीवे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस मोक्ष की बात यहां पर कह रही है, जो कि पुरुषार्थ है। उसको भी स्वयं असाधितम हाथ जोड़ करके मुक्ति देवी आती है, मुझे स्वीकार कर लो, मैं हूं। लेकिन भक्त लोग देखते भी नहीं है। भक्ति की महिमा श्रीपाद रूप गोस्वामी द भक्ति रसामृत सिंह में बताए हैं कि भक्ति कैसे होनी चाहिए। अहेतुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतुकी और व्यवहिता, बिना बाधा के, बिना किसी प्रकार के कठिनाई के, इजी। इसी बात को भागवतम में कहा गया है, सवई पुंसा परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। अहेतुकी अप्रतिहता वहां पर कहा गया है और यहां पर व्यवहिता कहा गया है। जो व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति के गुण में बताया गया है, क्लेशाग्नि सुबुधा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा सांद्र आनंद विशेषात्मा श्री कृष्ण कर्षणी चा। ये भक्ति के गुण है। भक्ति कैसी है? क्लेशाग्नि, क्लेश को खत्म करने वाली है। तो भगवान ऋषभ देव का परम चरित्र जो सुनता है उसका क्लेश क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जो भगवान का नाम लेता है उसका क्लेश खत्म हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वजे प्रपतंती माया मे ताम तरंती ते। हे कुंती नंदन, ये माया बड़ी बलवती है, बड़ा खतरनाक है, लेकिन माया जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनके लिए माया कुछ नहीं करती है। मम माया दुरतया, मेरी माया पार करना अत्यंत कठिन है। नीलू पांच मिनट, मम माया दुरतया, मेरी माया बहुत कठिन है पार करना, लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा शरण लेता है वो पार हो जाता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि माया के दास सदा उदास और कृष्ण के दास बिंदास, कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। बिंदास रहना है तो भगवान का भजन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि क्लेश को खत्म कर देता है, दुख को खत्म कर देता है। यदि किसी भक्त के पास क्लेश है, चाहे मेंटल और फिजिकल, तो समझ लो भैया कि हम भजन ठीक से नहीं कर रहे हैं, बस, और कहीं प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। यदि कोई मेंटली डिस्टर्ब है, कहो टेम्पल कमांड डिस्टर्ब कर रहा है, टेम्पल कमांडर का डिस्टर्ब बेचारा कर रहा है, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि तो भक्ति नहीं कर रहा है ना। मंगला आरती नहीं आता है, क्लास नहीं आता है, जपा नहीं करता है, कीर्तन में नाचता नहीं है, तो दुख नहीं होगा, होगा ना। क्लेशाग्नि कीर्तन में नाचने का, पहले जमाने में जब संध्या आरती थे, भक्त लोग आश्रम से भाग कराते थे कीर्तन में नाचने के लिए। अब संध्या आरती का संग बजा, सब मंदिर से भाग जाते आश्रम में जाने के। उल्टा हो गया जमाना, पता नहीं क्या हो गया। ये कीर्तन गाने वाले भाग जाते हैं आश्रम मंदिर से, नए भक्त बेचारे नाचते रहते हैं। पहले जमाना अलग था, संघ बजा भाग करके कोई छत पर से कूद जाते थे भक्त लोग मंगला आरती में आने के लिए। अभी तो संघ बजा चल दिए, हो गया, हाजिरी लगा दिए, चलो हो गया। तो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? तो डॉक्टर के पास जाओ। राधा कृष्ण प्रभु है इधर, हाँ। पहले हमारे पास डॉक्टर भी नहीं थे, ये डॉक्टर सेठ बगल वाले थे, पता है क्या दवा देते थे? डॉक्टर सेठ दवा देते थे, आजकल वो गर्मी के दिन पीते हैं ना, लाल वाला, क्या रोज का गुलाब का क्या बोलते हैं, गुलाब जा क्या है? जो भी है वो लाल पीते हैं ना पानी डाल करके, वो डॉक्टर अपने पास दो चार बोतल रख लिए थे हरे कृष्ण वालों के लिए, कोई बीमारी होगा वही दवा देंगे, वो लाल रोज का कह जाओ ठीक हो जाओ, और भक्त ठीक हो जाते थे। राधा कृष्ण बात सही है ना, वही दवा था लाल वाला, मैं चिट्ठी देता था जाओ भाई टेम्पल कमांडर से जाओ लेकर के आओ, एक ही दवा था। अभी तो जाओ बॉम्बे हॉस्पिटल टाटा हॉस्पिटल कहां का चेकअप कराओ, ये करो सिटी स्कैन करो, क्या क्या, पहले कोई रोगी नहीं था, क्योंकि भक्त लोग नाचते थे कीर्तन में, याद रखो। यहां तो लिखते हैं 7:40 हो गया, बहुत देर तक मैं रह गया, तपस्या बहुत कर लिया, 7:35 में चले जाना चाहिए था। तो रोगी नहीं होगा तो क्या होगा? मेंटल रोग होगा और फिजिकल रोग होगा, दोनों रोग होगा। यदि रोग से दूर होना है, भक्ति है क्लेशाग्नि, ये नाचना पाप नहीं है कीर्तन में, ये भक्ति है, भगवान के सामने नाच रहे हो। क्लेशाग्नि, क्लेश को खत्म करना है तो नाचो, क्लेश खत्म करना है तो नाम गाओ, क्लेश खत्म करना है भागवत कथा सुनो, क्लेश खत्म करना है, जितना दिन शरीर ठीक है रगड़ते रहो, घिसो, मंदिर सफाई करो, बाथरूम सफाई करो, टॉयलेट सफाई करो, जब करोगे तब क्लेश खत्म होगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन से भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, लिख लो, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो भक्ति कैसी है? क्लेश आदमी जो भक्ति करता है सब क्लेश दूर, शुभदा, कल्याणकारी है भक्ति। इसलिए तो कहा गया है एक पीढ़ी आगे और एक पीढ़ी पीछे, भागवत महापुराण में भगवान नरसिंह देव आशीर्वाद दिए हैं, शुभदा परम कल्याण देने वाली भक्ति है। और मोक्ष लघुता कृता, मोक्ष को बिल्कुल छोटा बना देता है, दुर्लभा, कृष्ण सब कुछ दे देते हैं लेकिन अपने को नहीं देते हैं, इसलिए उनका एक नाम है नंद नंद न द न, सब देंगे लेकिन अपने को नहीं देंगे, नंद नंदन न द न, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं नहीं देंगे, अपने को नहीं देंगे, नंद नंदन सुदुर्लभा सांद्र आनंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षण इच्छा। और सब प्रकार से आनंद ही केवल आनंद कंद भज भज बाय चैतन्य निथाय, केवल आनंद ही आनंद मिलता है भक्ति करने से, और कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली ये भक्ति है। तो जो लोग भक्ति के रास्ते पर रहते हैं उन्हें मुक्ति हां जोकर खड़ी रहती है। प्रभुपाद जी यहां पर बिलमंगल ठाकुर का कहते हैं मुक्ति मुकुलितांजलि सेवती स्मार। और प्रभुपाद जी मुक्ति का परिभाषा दिए हैं, भागवत के 10 तत्वों में से एक तत्व है मुक्ति तत्व, जिसका वर्णन भागवत महापुराण के 11 स्कंद में किया गया है। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। हित्वा अन्यथा रूपम, विभिन्न प्रकार का रूप हम बना लिए हैं, बहुरूपिया बन गए हैं, बाप के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, चेयरमैन के रूप में, कंपनी के मालिक के रूप में, नौकर के रूप में, ये सब बहुरूपिया का रूप है, ये हम लोग का रूप नहीं है, ये बहुरूपिया का रूप है। इन सबको त्यागना पड़ेगा भक्ति करना है तो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्प्रेरण निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। भक्ति इतना आसान नहीं है, जब तक से हम इसको त्यागेंगे नहीं भक्ति नहीं कर सकते, त्यागना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा। हित्वान्यथा रूपम, छोड़ दो नहीं तो भगवान मृत्यु के रूप में छुड़ाएंगे, जो बड़ा दुखदाई होगा, पेशाब और पैखाना कर मरना पड़ेगा। अच्छा है छोड़ दो अभी से। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और जीव का स्वरूप क्या है? जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण का सेवा करना ही मुक्ति है। दो प्रकार की मुक्ति है, एक तो यह मुक्ति हुई सामान्य मुक्ति, और विशेष मुक्ति स्वरूपेण व्यवस्थिति, दो प्रकार की है। एक स्वरूप है कि जीव कृष्ण का दास है, और दूसरा स्वरूप है कि हमारा कृष्ण से संबंध है, कोई शांत भाव में दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य, तो भगवान से वो संबंध स्थापित होना भी मुक्ति है। लेकिन पहले तो पहले क्लास पार करोगे, पहले मिडिल स्कूल पास करो, बाद में हाई स्कूल में जाओगे ना, तो पहले इसको करो। जब तक से चिट्टी काटने से शरीर में दर्द है तो समझो कि शरीर अभी हम हैं, शरीर में बंधे हैं, लेकिन चिट्टी काटने से जब दर्द नहीं है तो समझना मुक्ति हो गई। लेकिन ऐसा नहीं किसी को बीमारी हो जाता है और कितना भी काटो दर्द नहीं करता है, तो मत कहना कि मैं मुक्त हो गया हूं दर्द नहीं कर रहा, आप भी काट लो देख लो दर्द नहीं, वैसा बात नहीं है। प्रभुपाद जी के शरीर में इतना तकलीफ था कि वैद्यराज कह रही स्वामी जी कैसे अभी तक जी रहे हैं, इनके शरीर में इतना दुख है, क्योंकि प्रभुपाद मुक्त है, उनको शरीर से कोई ये नहीं था। प्रभुपाद जी वही बात, प्रत्येक जीवात्मा को स्वाभाविक स्थिति ईश्वर के दास की है। अतः जब कोई जीव ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है तो उसे पहले से मुक्ति प्राप्त हुई रहती है। फलतः भक्त कभी मुक्ति की स्पृहा नहीं करता, भले ही ईश्वर स्वयं क्यों न प्रदान करें। और भगवद गीता से कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नारिकम तथा। अरे और की कामना तो उसको है जिसके पास नहीं है, या जिसको आगे वाला अच्छा दिखाई पड़ता है। जो अपने पास है उसी में सेल्फ कंटेन है, तो आगे की जरूरत क्या है। तो समराइज इस वर्ष आज यही बताया गया कि साधु लोग संसार के गति को जानते हैं कि संसार कितना दुखदायी है, पाप से परिपूर्ण है। इसीलिए साधु लोग संसार में न रम करके भगवत भक्ति की सरिता में गोता लगाते रहते हैं, और उनमें उनको इतना आनंद आता है कि मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, फिर भी उसको वे स्वीकार नहीं करते हैं, उसको वे त्याग देते हैं। तो आज के श्लोक में भक्ति की महिमा बताई गई है, और उन्हें समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अन्य कोई वस्तु उन्हें नहीं चाहिए जीवन में, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ए मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे सुखी तुई। यही एकमात्र कामना रहती है, धन जन नाही मांगी कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति दिह कृष्ण मोरे कृपा करी। बस एकमात्र यही इच्छा रहती है कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? किशोर भाग गया ना कथा से, उसको मुक्ति चाहिए थी जल्दी। हाँ,
हरे कृष्ण। You explained that taking bath in river is one type of ananda.
Yeah.
One type of,
Yeah.
And taking bath in sea is another type of ananda, and taking bath in shower and all that.
Yes.
See, every day we are doing so many activities. So, and in doing so, if you do not perform the activity by remembering Krishna, will it not amount to sense gratification? Suppose I am taking 3 times bath and I don't remember Krishna, and my concentration is only on body cleaning. So that is sense gratification, correct?
That what you are saying is true, but I was giving comparative study of different kind of taking bath. It has nothing to do with Krishna consciousness. I was just explaining the people who like to enjoy in taking bath. Taking a bath with mug is one kind of enjoyment, especially in the summer season. Taking a bath with shower is different kind of enjoyment. Taking, you know, in pond or taking in river, taking under a upar se pani girta hai, kya bolte hai, jharna, waterfall, and taking in swimming in the ocean on the wave, there are different kind of power thing. There are different kind of enjoyment people have. And I was saying the flowing in the sarita or the river or waterfall is very nice. So devotee of the Lord, yes, when you take shower with the mug, also chant Hare Krishna. Anywhere you chant Hare Krishna. But I was not talking about that thing. I was not talking about taking bath. I was talking about that they swim in bhakti and they are enjoying the bhakti. Means they don't need anything else. That's what I was trying to say. They are self-contained. Tum baad mein puchna, usko prashn karna. Mic the mic, mic, mic. Vishnu.
Hare Krishna ji. Bhakti Rasamrita Sindhu mein पाप के बारे में कहा है कि कूट बीज और प्रारब्ध भक्ति करने से होता है। तो
अंकुश, बीज प्रारब्ध अप्रारब्ध
और प्रारब्ध जो है वो हम भक्ति करते हैं, लेकिन जीवन में प्रारब्ध बनकर आ जाते, तो भक्ति करने से पाप कटते हैं, तो ये प्रारब्ध किस अवस्था में कटते हैं? क्योंकि प्रारब्ध तो भक्ति जीवन में कितने भक्तों में जीवन
आने, फिर से बोलो।
भक्ति रसामृत में जैसे हमने कहा कि भक्ति करने से पाप कट जाते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में भी हम देखते कई सारी दुर्घटनाएं घटती है, तो प्रारब्ध कैसे कटता है? भक्ति से कटता है तो पाप कट जाता है, तो प्रारब्ध क्यों नहीं कटता है? जिस अवस्था में प्रारब्ध कटता है?
प्रारब्ध मतलब जो अभी आप कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो ना, उसका जो फल मिलेगा। देखो अप्रारब्ध मतलब पहले कर चुके हो उसका फल भोग रहे हो, प्रारब्ध अभी कर रहे हो उसका बाद में आएगा।
भक्ति समझ, प्रारब्ध मतलब जो कर्म फल आपके परिपक्व हो चुके हैं वो आपके जीवन में प्रारब्ध बनकर आते हैं, जो पिछले उसे, तो वही भक्ति भक्ति समृद्ध की परिभाषा है ना। प्रारब्ध मतलब जो परिपक्व फल बन चुके हैं,
नहीं जो अभी जो कर रहे हो प्रारब्ध में, अभी अभी असीम जी क्या कर रहे हैं? हाँ, जो पहले कर चुके हैं उसका अभी भोग रहे हैं, और अभी जो कर रहे हैं वो बीज के रूप में डाल रहे हैं,
लेकिन वो भक्ति से नष्ट हो जाएगा ना। वो जो अभी जो कर रहे हैं तो भक्ति करते हो तो बीज है, बीज तो नष्ट हो जाता है,
नष्ट हो जाएगा,
लेकिन जो प्रारब्ध आता है हम बोलते हैं कि भक्ति करने से नष्ट होता है, तो
क्या? अरे वो भी नष्ट हो जाएगा, भजन करो वो भी खत्म हो जाएगा। कैसे? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं किंचु च भक्ति भांजा कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भांजा, कर्माणि निर्दहति खत्म हो जाता है, किंतु च भक्ति भाजा, अन्य कोई साधन नहीं है, एकमात्र साधन है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, भजन करो खत्म हो जाएगा वो भी। ऑलराइट, आपका प्रश्न ससीम जी उत्तर देंगे, आपका और उनका, दो आदमी का प्रश्न। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।